पृष्ठ संख्या 313, रोमन का तीन, परिवार का आंतरिक वातावरण, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली। परिवार के आंतरिक वातावरण का भी व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस परिवार का आंतरिक वातावरण सुखद है, प्रेमपूर्ण है, सौहार्दपूर्ण है, वहां वात्सल्य का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। बालकों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार किया जाता है और उन्हें अच्छे आचरण सिखाए जाते हैं। उनका व्यक्तित्व विकास सुंदर ढंग से होता है। परंतु जिन परिवारों में आंतरिक वातावरण विषाक्त है, जहां आए दिन परिवार के सदस्यों के बीच खींचातानी चलती रहती है, वहां द्वेष, ईर्ष्या, आलोचना आदि की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः ऐसे परिवारों में पलने बढ़ने वाले बालकों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। अतः यह जरूरी है कि परिवार का आंतरिक वातावरण भी सुंदर एवं श्रेष्ठ हो। रोमन का चार, परिवार का आकार, फैमिली साइज। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक अति महत्वपूर्ण कारक है परिवार का आकार। यदि परिवार का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसमें माता पिता के अलावा चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, बुआ अथवा परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं, तो वहाँ पर बालकों के पालन पोषण में पूरा पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे परिवारों में बालक स्वयं ही अपने परिवार के सदस्यों को देखकर उनसे सीखते हैं और अपना व्यक्तित्व विकास करते हैं। छोटे परिवारों में पलने बढ़ने वाले बालकों का व्यक्तित्व विकास समुचित ढंग से होता है, क्योंकि वहाँ उनके पालन पोषण का पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। उनकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति समय पर की जाती है और तमाम तरह के साधन सुविधाएँ जुटाए जाते हैं। मगर यह भी याद रहे, जिन परिवारों का आकार बहुत ही छोटा होता है, जिनमें माता पिता और केवल एक ही बालक होता है, तो वहाँ बालक का व्यक्तित्व विकास सुंदर ढंग से नहीं हो पाता है। कारण स्पष्ट है कि इकलौता अथवा इकलौती होने के कारण बालक की माता पिता बहुत अधिक प्यार दुलार करते हैं। उनकी हर एक मांग की पूर्ति कर दी जाती है, भले ही वह मांग अनुचित ही हो। अधिक लाड़ प्यार के कारण बालक हठी एवं जिद्दी हो जाता है, फलतः उसका सामाजिक समायोजन गड़बड़ा जाता है। जिन परिवारों में माता नहीं होती है, चाहे कारण जो भी रहा हो, चाहे माता मर चुकी हो या तलाक लेकर अलग रह रही हो, या फिर कामकाजी होने के कारण घर से बहुत दूर जाकर नौकरी कर रही हो, वैसी परिस्थिति में भी बालक का व्यक्तित्व विकास कुंठित हो जाता है। बालक को पूर्ण ममत्व एवं वात्सल्य ही अपनी माँ ही दे सकती है। बालक का अपनी माता से बड़ा ही लगाव होता है, या यूं कहा जाए कि बालक तो माता का ही अंग है, जिसे समय के साथ अलग होना पड़ता है। अतः माता के अभाव में बालक का व्यक्तित्व विकास श्रेष्ठ ढंग से नहीं हो पाता है। यही स्थिति परिवार में पिता की भी होती है। पिता की अनुपस्थिति में बालक स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, फलतः उसमें असुरक्षा एवं हीनता की भावना पनप जाती है। पृष्ठ संख्या 314, रोमन का पांच, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली। परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा का भी बालकों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जिन परिवारों की आर्थिक दशा अच्छी है, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर हो जाती है। उनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा भी ठीक प्रकार से किया जाता है। आहार में फल फूल, सूखे मेवे एवं पौष्टिक भोजन दिए जाते हैं। परिणामतः उनका व्यक्तित्व विकास सुंदर ढंग से होता है। इसके ठीक विपरीत आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार में पलने बढ़ने वाले बालकों का न तो पौष्टिक भोजन ध्यान दिया जाता है और न ही उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाती है। मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं करवाए जाते। इतना ही नहीं, उन्हें पहनने के लिए समयानुकूल वस्त्र भी नहीं होते। अतः उनमें क्षमताएं होते हुए भी उनका व्यक्तित्व विकास कुंठित हो जाता है। गरीबी एक अभिशाप है। यह उक्ति गरीब परिवार में पलने बढ़ने वाले बालकों में शत प्रतिशत देखने को मिलती है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि गरीब माता पिता के बालकों में मानसिक दुर्बलता, अंतर्मुखता, आत्महीनता की भावना, कुंठा एवं सामाजिक कार्यों से अलग होने की प्रवृत्ति आ जाती है। कुछ बालक गरीबी से तंग आकर गलत आचरण को अपना लेते हैं और लूटपाट, चोरी डकैती, आगजनी, बलात्कार, तोड़फोड़ आदि समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। परिवार की आर्थिक दशा के समान ही सामाजिक दशा का भी परिवार के व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यहाँ सामाजिक दशा से अभिप्राय है परिवार का समाज में क्या स्थान है, समाज में उनका कितना मान सम्मान एवं इज्जत है। जिन परिवारों की सामाजिक दशा ठीक रहती है उनके घरों में प्रतिष्ठित सम्मानीय एवं विद्वान लोगों का आना जाना लगा रहता है। उनके संपर्क में आने से बालकों को अच्छी अच्छी बातें सीखने का अवसर मिलता है, बालक शिष्टाचार सीखते हैं, फलतः बालक का व्यक्तित्व विकास समुचित ढंग से होता है। रोमन का 6 परिवार के रहने का स्थान, प्लेस वेयर फैमिली लिव्स। परिवार गांव में रहता है अथवा शहर में, इस बात का भी बालक के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार शहर में रहता है तो वहां उसे अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, बिजली की व्यवस्था रहती है, अतः बालक को कार्य करने, पढ़ने लिखने के लिए अधिक समय मिलता है, वह रात्रि में भी पढ़ लिख सकता है। शहरों में सार्वजनिक पुस्तकालय होती हैं जहां वह विभिन्न ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है, पत्र पत्रिकाएं, बुलेटिन, अखबार आदि से ज्ञान अर्जित कर सकता है। परंतु गाँवों में शिक्षण की समुचित सुविधाएँ नहीं होती हैं, कई गाँवों में तो प्राथमिक विद्यालय तक नहीं होते हैं, अतः बालकों को घर से काफ़ी दूर 2 से 3 किलोमीटर पढ़ने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है। गाँव में बिजली ना होने से ग्रामीण बालक शाम होने के बाद या तो डिबरी या लालटेन से पढ़ते हैं अथवा पढ़ ही नहीं पाते हैं। पृष्ठ संख्या 315, रोमन का 7, बालक का जन्मक्रम, बर्थ ऑर्डर ऑफ चाइल्ड। समान वंशानुक्रम एवं पारिवारिक सामाजिक परिवेश एक होते हुए भी बालक का व्यक्तित्व विकास उनके जन्मक्रम द्वारा प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि पहले जन्मे बालक को माता पिता एवं परिवार के सदस्यों द्वारा अधिक लाड़ प्यार मिलता है। वह कुछ दिनों तक इकलौता रहता है जिसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। इकलौता होने के कारण उसके खिलौनों पर केवल उसका ही अधिकार रहता है। वह माता पिता, दादा दादी एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर केवल अपना ही अधिकार समझता है और वह यह नहीं चाहता है कि दूसरे लोग उसके माता पिता के साथ रहें व खेलें। दूसरे बालक के जन्म लेने पर उसका यह अधिकार छिन जाता है और कभी कभी उसे तिरस्कार अथवा अवहेलना भी सहन करना पड़ता है। अतः पहले जन्मे बालकों में असुरक्षता, आश्रितता, ईर्ष्या, उत्तरदायित्व, प्रभुत्व, रूढ़वादिता, आक्रामकता, सुझाव ग्रहणशीलता, उत्तेजकता, संवेदनशीलता, अनिश्चितता, अभिप्रेरणा, उच्च उपलब्धि आदि गुणों का विकास हो जाता है। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि सबसे बाद में जन्मे बालकों में उदारता, आत्मविश्वास, सुरक्षा, अनुपयुक्तता की भावना, हीनता की भावना, बेचैनी, ईर्ष्या, अनुत्तरदायित्व, बहिर्मुखी आदि गुणों का विकास होता है। उपरोक्त सभी लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार के बालकों के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। रोमन का 9, बालक का नाम, चाइल्ड्स नेम। बालक को जिस नाम से पुकारा जाता है उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर अवश्य ही पड़ता है। जब बालक छोटा होता है तब उसे अपने नाम के अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, परंतु जब वह बड़ा हो जाता है तो वह अपने नाम के अर्थ को समझने लगता है। साथ ही दूसरे लोग उसे उसके नाम का अर्थ बताने लगते हैं, उनकी क्या अभिवृत्तियाँ हैं, इससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बालक का नाम इतना बड़ा और जटिल है कि लोग उसे पूरा नहीं बोलते तो उसके नाम को ही बिगाड़ देते हैं, तो इससे बालक का मन बड़ा ही दुखी होता है। वह आत्म प्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट नकारात्मक हो जाता है। वह अपने नाम को ही कोसने लगता है, जैसे किसी का नाम राधा वल्लभ कृष्णकांत प्रसाद सिंह है तो लोग इतना बड़ा नाम नहीं लेते और उसे रामा बोलते हैं। उदाहरण लीजिए, यदि किसी लड़की का नाम बोलते हैं कि सती वृंदा देवी है, उसके साथ लोग उसे बिंदवा या बिंदा कहते हैं और उसे सती नाम एवं देवी नाम का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फलतः बालिका अत्यंत ही दुखी हो जाती है, वह अपने नाम में परिवर्तन करना चाहेगी। अतः स्पष्ट है कि बालिका का नाम इस प्रकार का होना चाहिए जिसका सुंदर अर्थ हो, बोलने में आसानी हो, जिसे अनपढ़ अशिक्षित लोग भी आसानी से बोल सकें। यदि किसी का नाम कंस, दुर्योधन, दुशासन या रावण रखा जाए तो महाभारत एवं रामायण के अच्छे पात्रों के नाम नहीं हैं, ऐसे नाम से बालक का नाम बड़ा ही दुखी होता है। उसमें ग्लान की भावना पनपेगी जो उसके व्यक्तित्व विकास को कुंठित कर देगी। नंबर 10, प्रारंभिक अनुभव, अर्ली एक्सपीरियंस। प्रारंभिक अनुभवों का बालकों के व्यक्तित्व पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। फ्रायड ने सबसे पहले व्यक्तित्व विकास एवं प्रारंभिक अनुभवों के प्रभाव के संबंध में अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययनों में यह पाया कि जिन बालकों को प्रारंभिक अनुभवों के बारे में स्मृति बनी रहती है, वे अन्य अनुभवों की अपेक्षा व्यक्तित्व विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि उन अनुभवों का अमिट छाप बालक के आत्म प्रत्यय पर पड़ता है। यदि बालक के प्रारंभिक अनुभव दुखद होते हैं, पीड़ा मुक्त एवं दर्दनाक होते हैं, तो उनका व्यक्तित्व विकास कुंठित हो जाता है। वे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, उनके भीतर नकारात्मक आत्म प्रत्यय पनपने लगता है जो किशोरावस्था तक दृढ़ एवं अस्थायी हो जाता है। यदि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बालकों की इच्छाओं एवं रुचियों को दबाया जाता है, तो आगे जाकर बालक का व्यवहार भी बचकाना ही होगा। वे बहिर्मुखी स्वभाव वाले नहीं होंगे, उनका व्यक्तित्व आत्म केंद्रित होगा तथा अपना अधिकांश समय चिंतन में बिताएंगे। वे अपने मन की बात दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं कर पाएंगे। परंतु जिन बालकों का बचपन सुखद होता है, बाल्यावस्था हंसी खुशी से बीतता है, उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा होता है, उनका व्यक्तित्व विकास भी सुंदर ढंग से होता है। नंबर 11, सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक अति महत्वपूर्ण कारक है सांस्कृतिक प्रभाव। संस्कृति व्यक्तित्व विकास में अहम योगदान देता है। संस्कृति व्यक्तित्व विकास के लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण निर्मित करती है, जिसमें पल बढ़कर बालक विभिन्न मानवोचित गुणों को सीखता है और बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व सांस्कृतिक ढांचे में ढलकर एक विशेष रूप को ग्रहण करता है। सांस्कृतिक के अंतर्गत आचार विचार, व्यवहार, नियम, प्रथाएं, परंपराएं, खान पान के तरीके, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, धर्म आदि आते हैं। अतः बाल्यावस्था से ही बालक के ऊपर सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है। जब बालक बालिकाएं सांस्कृतिक मापदंडों के अनुसार अपने परंपराओं को निभाते हैं तथा समाज द्वारा मान्य मूल्यों व्यवहारों के अनुसार कार्य करते हैं, तो उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिलती है और उनका व्यक्तित्व सुंदर होता है। परंतु यदि बालक सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है, तो उसे सामाजिक मान्यता नहीं मिलती। जैसे प्रारंभ में बालक जिन सांस्कृतिक वातावरण में रहकर पलता है, उसी के अनुसार व्यवहार करता है, खान पान, रीति रिवाज, भाषा आदि को सीखता है। जब बालक बड़ा होता है और पढ़ने लिखने व नौकरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जहाँ की संस्कृति बिल्कुल ही भिन्न होती है, रीति रिवाज भिन्न होते हैं, खान पान भिन्न होते हैं, भाषाएं भिन्न होती हैं, वहाँ बालक को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बालक को समायोजन स्थापित करना पड़ता है, परंतु यदि बालक उन्हें नकारता है, तो उसे सामाजिक मान्यता नहीं मिलती, फलतः उनका व्यक्तित्व विकास अच्छा नहीं होता है। नंबर 12, संवेग इमोशंस। संवेगों का भी व्यक्तित्व विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। वे बालक जो जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, बचकाना हरकत करते हैं, दूसरों के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, उनका व्यक्तित्व सुंदर नहीं होता है। कारण स्पष्ट है कि इससे बालकों को कोई पसंद नहीं करता। परंतु ऐसा तब होता है जब बालकों के संवेगों को बहुत अधिक दबाया जाता है, उनके साथ ज्यादती की हो जाती है, जिसके कारण उनके मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, वे हठी एवं जिम्मेदेह हो जाते हैं। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालकों में कई असमान व्यवहार पाए जाते हैं, जैसे नाखून चबाना, बिस्तर गीला करना, अंगूठा चूसना, दूसरों के समक्ष बचकाना हरकत करना, सिर खुजाना आदि। पृष्ठ संख्या 317, उच्च संवेगात्मक लड़कियों में मासिक धर्म के समय देखी जाती है। वयः संधि अवस्था में संवेगात्मक रूप से परेशान होना शारीरिक एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन के कारण होता है। यही कारण है कि किशोर कभी तो बचकाना हरकत करता है तो कभी प्रौढ़ों की तरह करता है। नंबर 13, सफलता एवं असफलता, सक्सेस एंड फेल्योर। सफलताओं एवं असफलताओं का भी व्यक्तित्व विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। सफलता बालक के आत्म प्रत्यय, व्यवहार, प्रतिमान, समायोजन आदि को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि बालक को किसी कार्य करने पर सफलता मिलती है तो वह उत्साहित होकर सफलता प्राप्त करने के लिए और भी अधिक प्रयत्न करता है और बुलंदियों को छूना चाहता है। इससे उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है, उसे खुशी मिलती है। परंतु यदि बालक किसी कार्य को बार बार करने के बावजूद भी असफल हो जाता है तो उसके आत्म प्रत्यय, कार्य व्यवहार, समायोजन आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह अपने जीवन को भार स्वरूप समझने लगता है, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, उसके मन में हीन ग्रंथियां डेरा डाल देती हैं। फलतः बालक का व्यक्तित्व विकास कुंठित हो जाता है। यही कारण है कि जब कोई बालक परीक्षा में असफल होता है तो वह आत्महत्या कर लेता है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति जिनका व्यापार में काफी घाटा हो जाता है, वे भी हृदयाघात, हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। क्षमता से अधिक कर्ज लेने वाले की भी यही स्थिति होती है। जब वे कर्ज चुकाने में असफल हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए सफलता एवं असफलता का व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्ति की नज़रों में व्यक्ति सफल होता है परंतु स्वयं की नज़रों में असफल होता है। ऐसी स्थिति में उसे दोहरी मार झेलनी पड़ती है। बाहर से तो वह खुश दिखाई देता है परंतु आंतरिक मन में वह दुखी रहता है, क्योंकि व्यक्ति को जितनी आशा थी उससे बहुत ही कम मिला है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बालक 10वीं में 60% अंक लाता है तो बालक प्रथम श्रेणी में 10वीं की परीक्षा पास कर लेता है। शिक्षक, अभिभावक उसके सहपाठी उसे बधाई देते हैं, परंतु बालक का अंतर्मन दुखी होता है क्योंकि उसे आशा थी कि वह परीक्षा में कम से कम 75% अंक अवश्य लाएगा। पृष्ठ संख्या 318। असफलता केवल बालक के आत्म प्रत्यय को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि यह बालक के सामाजिक समायोजन एवं व्यक्तित्व विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। असफलता के कारण बालकों में निम्न आकांक्षा स्तर, अनुपयुक्तता, असुरक्षितता, हीनता की भावना, निम्न प्रेरणा स्तर, अपनी योग्यताओं के संबंध में अनिश्चय, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना, विषाद की भावना आदि उत्पन्न हो जाते हैं। परिणामतः उनका व्यक्तित्व विकास अच्छा नहीं होता है। सफलता एवं असफलता का बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे संक्षेप में निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है। तालिका, सफलता एवं असफलता का व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। टेबल, इफेक्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ड्यू टू सक्सेस एंड फेल्योर। नंबर 1, बालक खुश एवं प्रसन्नचित रहता है। बालक दुखी, खिन्न, उदास, निराश एवं क्लांत व थका थका रहता है। नंबर 2, बालक में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना कूट कूट कर भर दी जाती है, वह संतुष्ट रहता है। आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, बालक स्वयं की नज़रों में गिर जाता है, आत्मसम्मान की भावना उसमें नहीं रहती, वह सदैव असंतुष्ट रहता है। नंबर 3, बालक जो अर्जित करता है उसे काफ़ी संतुष्टि मिलती है। नंबर 3, बालक अपने अचीवमेंट से असंतुष्ट रहता है। नंबर 4, बालक में सुरक्षा एवं निश्चितता की भावना भरी रहती है। नंबर 4, बालक अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, अनिश्चितता उसके रग रग में भर जाती है। नंबर 5, बालक सहयोगी प्रवृत्ति का बनता है। नंबर 5, बालक असहयोगी प्रवृत्ति का बन जाता है। नंबर 6, भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करता है। असफलताओं के कारण बालक भीतर से टूट जाता है, अतः वह प्रयास करना ही छोड़ देता है। नंबर 7, बालक नवीन चुनौतियों को ढूंढता है और उसे स्वीकार करता है। नंबर 7, बालक नवीन चुनौतियों को देखकर घबरा जाता है और वह उससे दूर भागता है। नंबर 8, बालकों में स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है। नंबर 8, बालक में परतंत्रता की भावना का विकास होता है। नंबर 9, यदि बालक को सफलता बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, कम मेहनत से मिल जाती है, तो वह प्रयास करना छोड़ देता है या प्रयास करना कम कर देता है, परिणामतः आगे चलकर कठिन परीक्षाओं में असफल हो जाता है, जैसे MBA, IIT, PMT आदि। नंबर 9, यदि बालक बहुत अधिक प्रयत्न करता है और बाद में असफल हो जाता है तो वह सफलता की सीढ़ी समझता है, ऐसा मानकर बार बार प्रयास करता है, परिणामतः वह कठिन परीक्षाओं में अवश्य सफलता हासिल कर लेता है। नंबर 10, बालकों में विषाद की भावना उत्पन्न नहीं होती है। नंबर 10, बालकों में विषाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। नंबर 11, बार बार सफलता प्राप्त करने के कारण बालक में उच्च आकांक्षा प्रेरणा स्तर पैदा हो जाता है, उसे अपनी योग्यता एवं मेहनत पर विश्वास हो जाता है, परिणामतः वह जीवन में कुछ कर दिखाना चाहता है। नंबर 11, बार बार असफलता प्राप्त करने के कारण बालक में निम्न आकांक्षा एवं प्रेरणा स्तर विकसित हो जाते हैं, उसे अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं होता है, वह अपनी त्रुटियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है और जीवन के प्रति उसकी निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। नंबर 12, जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा होता है। नंबर 12, जीवन के प्रति दृष्टिकोण ऋणात्मक होता है, इस कारण वह कभी कभी इहलीला ही समाप्त कर देना चाहता है। कई व्यक्ति असफलताओं के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। नंबर 14, विद्यालय का प्रभाव, स्कूल्स इन्फ्लुएंसेस। जब बालक बड़ा हो जाता है और पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगता है तो वहाँ का वातावरण उसके व्यक्तित्व के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। कारण है, शिक्षा भावी पीढ़ी के निर्माण की आधारशिला मानी जाती है और शिक्षण संस्थान ज्ञान का मंदिर। अध्यापक विश्वकर्मा के रूप में है, समाज में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान माना है, जो बालक को न केवल शिक्षित करते हैं बल्कि उनके भीतर पर्याप्त दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों का विकास करते हैं, उसके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी रोशनी फैलाते हैं। शिक्षक पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा का सामूहिक प्रयोग कर बालक के व्यक्तित्व का समुचित विकास करते हैं, बालकों के आवेगों संवेगों का नियंत्रण करते हैं तथा एकाग्रता बढ़ाने का अभ्यास, संकल्प शक्ति का विकास, अनुशासन आदि के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास करते हैं। विद्यालय अग्र रूपों में व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। पृष्ठ संख्या 320, रोमन का एक, विद्यालय का पाठ्यक्रम, स्कूल्स करिकुलम। बालक के चौमुखी व्यक्तित्व का विकास करना विद्यालय का पहला एवं प्रमुख उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बालकों की आयु को ध्यान में रखते हुए उनके पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत न केवल पढ़ना लिखना सिखाया जाता है बल्कि शिक्षण के साथ कई शैक्षणिकतर गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं, जैसे नृत्य, संगीत, पेंटिंग, चित्रकला, हस्तकला, तैरना, व्यायाम आदि। बालकों के लिए रोजगार उन्मुखी शिक्षा का भी आयोजन किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय स्वास्थ्य शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है ताकि बालकों के चरित्र का सुंदर विकास हो सके। अतः विद्यालय द्वारा बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चरित्र, खेल आदि का विकास किया जाता है। रोमन का 2, शिक्षक टीचर। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे समाज ने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर का दर्जा दिया है। ब्रह्मा जहाँ जगत निर्माता है, वहीं विष्णु संहार करता और महेश पालन करता है। ऐसी स्थिति में गुरु का दायित्व बढ़ जाता है कि वे बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए भरपूर कोशिश करें, वे उनके भीतर ज्ञान के दीपक जलाएं और उनके भविष्य को सुखद बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। बालक अनजाने में ही अपने शिक्षक से बहुत अधिक प्रभावित होता है और उनके कार्य व्यवहार, अभिवृत्तियों आदि का मन ही मन अनुकरण करते रहता है। शिक्षक का प्रभावशाली व्यक्तित्व बालक के मन पर गहरा प्रभाव डालता है और बालक बड़ा होकर उन्हीं की तरह बनना चाहता है। अतः शिक्षक का व्यक्तित्व, उनका शील गुण, व्यवहार आदि सभी कुछ सुंदर होना चाहिए ताकि बालक उनका अनुकरण कर सके। रोमन का 3, विद्यालय का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। घर में तो बालक अपनी मर्जी से जब चाहे खेल कूद लेता है, हुड़दंगे मचाता है, परंतु विद्यालय में उसे अनुशासित होकर काम करना पड़ता है। विद्यालय में अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, जैसे समय पर विद्यालय में उपस्थित होना, सच बोलना, बिना आज्ञा कक्षा के बाहर नहीं जाना, चोरी नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कक्षा में शोरगुल नहीं करना। जब बालक इन नियमों का पालन प्रतिदिन करता है तो धीरे धीरे ये गुण उसके व्यक्तित्व में समाहित हो जाते हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते हैं। फलतः बालक का सर्वांगीण विकास होता है। परंतु यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रभुत्वशाली अनुशासन एवं बालक के व्यक्तित्व में खोट ला देते हैं। वहीं अत्यधिक छूट से बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव, आत्मकेंद्रता, आत्महीनता का अभाव आदि अवगुण विकसित हो जाते हैं। लोकतांत्रिक अनुशासन से बालकों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान एवं उत्साह बढ़ता जाता है। पृष्ठ संख्या 321, रोमन का तीन, सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान, ट्रांसफर ऑफ कल्चरल वैल्यूज। विद्यालय में विभिन्न जगहों से बालक पढ़ने आते हैं। उन्हें धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान आदि भिन्न भिन्न होते हैं। वे अपने सांस्कृतिक प्रथा, रीति रिवाज आदि के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, जिससे बालक को विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिलती है। वे दूसरे धर्म का आदर करना सीख जाते हैं। इससे उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिलती है और व्यक्तित्व का समुचित ढंग से विकास होता जाता है। नंबर 4, पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। शिक्षक अच्छे अनुशासित बालकों को पुरस्कृत करते हैं। जो बालक कक्षा में अच्छा कार्य करते हैं, खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और कलेक्टर, चिकित्सक, मुख्यमंत्री अथवा अन्य सम्मानीय व्यक्ति को बुलाकर उनके हाथों से पुरस्कार देते हैं। इससे बालकों में कार्य करने की भावना का विकास होता है, उनमें श्रेष्ठता सिद्ध करने की भावना उत्पन्न होती है, साथ ही उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बढ़ता है। इसी प्रकार यदि कोई बालक गलती करता है, कक्षा में दूसरे बालकों के साथ मारपीट करता है या चोरी करता है तो शिक्षक उसकी निंदा करते हैं, बालक को दंडित करते हैं। फलतः बालक दुर्गुणों अथवा बुराइयों को त्याग कर अच्छा बालक बनता है। इस प्रकार उसमें सद्गुणों के विकास द्वारा सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पृष्ठ संख्या 321, नंबर 15, खेल के साथी एवं मित्र, प्लेमेट्स एंड फ्रेंड्स। खेल के साथियों का स्वभाव, कार्य व्यवहार, आचार विचार, आदर्श आदि बालकों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। बालक जिन कार्यों, व्यवहारों, कौशलों आदि को अपने शिक्षकों, माता पिता या परिवार के सदस्यों से नहीं सीख पाते, वे उन्हें अपने खेल के साथियों एवं मित्रों से बड़े ही आसानी से सीख जाते हैं। जिन बालकों को अपने मित्रों एवं खेल के साथियों से समर्थन नहीं मिलता, वे अकेले रह जाते हैं, वे सदैव तनाव की स्थिति में रहते हैं। फलतः वे चिड़चिड़े एवं क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, उनका व्यक्तित्व विकास समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। बालक अपने साथियों के साथ रहकर ही सामाजिकता के गुणों को सीखता है, जिससे उसमें अहम की भावना कम होती है और हम की भावना का विकास होता है। बालकों की जिन आदतों एवं व्यवहारों को उनके मित्र पसंद नहीं करते हैं, उसे वह त्याग देता है और अपनी आदतों एवं व्यवहारों में सुधार लाता है। खेल खेल में ही बालक अपने दोस्तों से प्रभुत्व एवं नेतृत्व के गुणों को सीखता है। वह कभी श्रोता बनकर तो कभी नेता बनकर, कभी कलेक्टर बनकर तो कभी कर्मचारी बनकर, कभी डॉक्टर बनकर तो कभी रोगी बनकर, कभी शिक्षक बनकर तो कभी विद्यार्थी बनकर समाज के विभिन्न भूमिकाओं को करना सीख जाता है। इतना ही नहीं, वह अपने दोस्तों के साथ रहकर एवं स्वमूल्यांकन करना भी सीख जाता है। इससे उनका बौद्धिक एवं संवेगात्मक विकास होता है। फलतः बालक के व्यक्तित्व में सुंदर गुणों का समावेश होता है, उनके सुंदर चरित्र का निर्माण होता है, उनमें सहयोग का गुण पाया जाता है, वह लोकप्रिय बालक बनता जाता है।